بسم الله الرحمن الرحیم. ہم پچھلے 2 ہفتوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا موٹیو کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ایٹ دی اینڈ آف اٹ میں آپ کے سامنے اپنی کنسٹرکشن آف ریالٹی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیو پہ بہت فرق ڈالتا ہے، وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. اور اس پریزنٹیشن کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو آج اچھی طرح سے سنیں. آج کے اس بریف سیشن کے بعد آج بھی اور اگلے ہفتے بھی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے کامنٹس ہوں کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں، اس پہ دیکھیں کہ آپ کو کیا بات، اس میں سے کون سا نقطہ ٹھیک نہیں لگتا ہے یا کون سا نقطہ جو ہے وہ ابھی آپ کی کنسٹرکشن میں شامل نہیں ہے، کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دس شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. ظاہر ہے کہ علم میں کبھی بھی ہم اس جگہ نہیں پہنچتے ہیں کہ آگے اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹ شوڈ آلویز بی اے جرنی. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر میں میری ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں. ایک چیز آئی وڈ جسٹ لائک ٹو کلیریفائی، یہ جو میری کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے، یہ ظاہر ہے کہ آئی ایم اے بلیور، آئی ایم اے مسلم، اینڈ آئی بلیو دیٹ دیر از اے گاڈ ہو ہیز کریٹڈ دس ہول سیٹ اپ. اس سے آگے کی میں بات بیان کر رہا ہوں، یعنی یہاں پر یہ بات ابھی نہیں ہو رہی ہے کہ میں اس کو کس بیسس پہ مانتا ہوں. میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کو جس بیسس پہ مانتا ہوں وہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم بات کر لیں گے، لیکن یہ بات کہ اس کو اس ماننے کا مطلب کیا ہے اور اس کے نتیجے میں میری زندگی کی جو کنسٹرکشن ہے اس پر فرق کیا پڑتا ہے، یہ ہے جو آج کا ٹاپک ہے. اس سے پیچھے ہم نہیں جا رہے آج، ٹھیک ہے جی، کہ واٹ از دا بیسس آف فیتھ ان گاڈ اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا جی، ہم یہاں سے بات کا آغاز کرنے لگے ہیں آج، اور پھر میری گزارش یہی ہے کہ آپ پلیز اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کوشچنس پیدا ہوتے ہیں ان کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ مجھے لیے بھی غور کرنے کا ایک دروازہ کھلتا ہے. جی، اس سے مائی کنسٹرکشن آف ریالٹی، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دا ون گاڈ از ناٹ اونلی دا کریٹر but is also actively running all the affairs. یہ important بات ہے جی، یعنی میں صرف یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات اس سے آگے شروع ہو رہی ہے. خدا کو میں کریٹر کی حیثیت ہی سے نہیں مانتا ہوں، خدا کو میں یہ مانتا ہوں کہ ہی از ایکچولی رننگ آل دی افیئرز اکارڈنگ ٹو ہز ایٹریبیوٹس. وہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ سامنے رکھ لیجیے، جو میں نے پچھلے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. The reason for that is کہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ اصل میں ان ایٹریبیوٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے. ان ساری چیزوں کا جو میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، اس کی جو بیسس ہے قرآن مجید میں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو الگ سے شیئر کر دوں گا. اس وقت میرے پاس وہ سارے نوٹس نہیں ہیں، لیکن میں اگر آپ جو بھی آپ میں سے چاہے گا میں اس کے ساتھ یہ الگ سے شیئر بھی کر دوں گا. So the first thing is that the God is not only the creator but is also actively running all the affairs. Number 2 is that God is actively controlling not just the working of the cosmos, ye jo aas paas hamare pure ke pura setup hai, sitare hain, chand hai, suraj hai, and so on and so forth, ye jo ek bahut hi wasi kainat hum dekhte hain usme sirf khuda uski working ko nahi chala raha hai balki also all the incidents in every individual's life, every incident that happens to me, جو کچھ میری زندگی میں ٹرانسپائر کر رہا ہے وہ خدا کی اجازت سے بھی اور خدا کی مرضی سے بھی ٹرانسپائر کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی وہ خدا کے علم میں بھی ہے، خدا کی قدرت بھی ہے کہ اس کو روک دے، خدا کی حکمت بھی ہے کہ وہ اس کو ہونے دے. یہ سب چیزیں بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں. نمبر 3، دس لائف از اے ٹیسٹ فار اس. یہ جو پوری کی پوری زندگی ہے جس میں ہم اس وقت جس کو ہم گزار رہے ہیں، وہ ہمارا ایک آزمائشی دور ہے. Comforts and hardships are all a part of the test. During this period, God's justice is deferred. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जी, जो नोट करने की है कि अल्लाह ताला की जो सिफत अदल है उसको रोका गया है. अल्लाह ताला ने इसको कुरान मजीद में बयान किया है कि इसको मैंने, अगर मैं फौरन अदल कर दूं तो उसके क्या नतायज निकलेंगे. असल में इस सिफत अदल का डिफर्ड होना ही इसको आजमाइश बना रहा है. यानी यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला इस वक्त अदल के साथ मामलात नहीं कर रहे हैं, वो एक आजमाइशी दौर है जिसमें अगर अदल को रोका ना जाता तो वो आजमाइश नहीं हो सकती है. थोड़ी देर के लिए उसको इस तरह से इमेजिन कीजिए कि मैं जब जब गलती करूं तो मुझे फौरन पकड़ लिया जाए. ठीक है जी, एक मरतबा दो मरतबा मैक्सिमम कर पाऊंगा, इसके बाद मेरे अंदर जो वो जो हुजूरी की कैफियत है खुदा के साथ वो डायरेक्टली पैदा होनी शुरू हो जाएगी. लिहाजा वो जरूरी है कि उस वक्त तक कि जब तक ये आजमाइश जारी है वो बिल गैब रहे. ठीक है जी, ये ईमान बिल गैब का मामला रहे, ना कि मुशाहिदा किया जाए और ना कि उसकी जस्टिस को इमीडिएटली एक्सपीरियंस किया जाए. उसकी जस्टिस हमारे ऊपर इस वक्त डिफर्ड है इस आजमाइश के दौर में. नंबर फोर, द मॉरल वैक्यूम क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ जस्टिस विल बी फिल्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. जाहिर है कि जब जस्टिस नहीं है तो इसके नतीजे में एक मॉरल वैक्यूम पैदा होता है. मॉरल वैक्यूम से मेरी मुराद है कि बुरा करने पर उसके लाजमी नतायज हमें नहीं फेस करने पड़ते फौरन, अच्छा करने पर उसका इमीडिएट फायदा नहीं होता फौरन. ये एक मॉरल वैक्यूम है जिसको हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है. यानी ये मॉरल वैक्यूम का होना जो है एक बहुत बड़ी वजह है कि खुदा के वजूद पर लोगों के सवालात पैदा हुए. कि जी नंबर फाइव, गॉड लव्स अस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. गॉड लव्स अस एंड कॉन्टिन्यूअली प्रोवाइड्स अस अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, इम्प्रूव एंड सक्सीड इन दिस टेस्ट. हालात जो हमारे ऊपर आ रहे हैं अल्लाह ताला उनके जरिए से हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रोथ की, इम्प्रूवमेंट की और सक्सेस की इस जिंदगी में. ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दीज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड इम्प्रूव आर प्रोवाइडेड अमंग अदर थिंग्स थ्रू द वेरियस प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स ऑफ इन आवर लाइव्स. ये जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं ये असल में हमारे साथ जो वाकयात हो रहे हैं, कभी खुशी के कभी गमी के, उसके अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. कभी किसी के जरिए से कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है, किसी का धोखा उठाना पड़ जाता है, किसी की गाली बर्दाश्त करनी पड़ जाती है. तो ये सारी चीजें जो हैं जो हमारे साथ हो रही हैं, जो हमें कभी दुख पहुंचाती हैं कभी खुशी देती हैं, ये असल में वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो ग्रोथ की अल्लाह ताला हमें प्रोवाइड कर रहा है. ये इन गॉड साइट, इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना जरूरी है जी. इन गॉड साइट आवर सक्सेस इन द हेयरआफ्टर इज फार मोर डिजायरेबल देन द कंफर्ट्स ऑफ दिस टेम्पररी लाइफ. इसको कुरान मजीद ने बयान भी किया है जी. यानी खुदा की नजर में जिंदगी की जो आराम है, इस दुनिया जो छोटी सी जिंदगी है जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है, एंड इट इज अ वेरी अनप्रडिक्टेबल लाइफ. यानी इंसान सारी जिंदगी जिन नेमतों की तगोदौ में लगा रहता है, जब वो उसको मिल जाए तो उसको एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि अब कहीं ये खत्म ना हो जाए. ठीक है जी, ये इस जिंदगी की हकीकत है. इससे आशना होने के बाद इसको समझना कि अल्लाह ताला की नजर में हमारी जो आखिरत की कामयाबी है वो हमारी इस दुनिया की जिंदगी में आराम से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है. इसको बार बार कुरान मजीद ने बयान किया जी. नंबर एट, ट्रस्ट इन गॉड अमंग अदर थिंग्स. ये बड़ा जरूरी है इसको समझना. आमतौर पर हम ये कहते हैं, आपने ये फ्रेज बहुत सुना होगा कि अगर कोई मुश्किल में है तो हम उससे ही कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और इसका मतलब आमतौर पर ये समझा जाता है कि इस मुश्किल को दूर फरमाएगा. जबकि असल में ट्रस्ट इन गॉड से मुराद बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लाह ताला जिस मुश्किल में डाल रहे हैं वो हमारी बेहतरी ही के लिए डाल रहे हैं. तो ट्रस्ट इन गॉड अमंग अदर थिंग्स इम्प्लाइज दैट व्हाटएवर ही अलाउज ट्रांसपायरिंग इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, दैट विल एनेबल अस टू ग्रो मॉरली एंड इम्प्रूव एज ह्यूमन बीइंग्स इफ वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. ये ये जो क्वालिफिकेशन है ये बड़ी जरूरी है जी। यानी देखिए, हमारी जिंदगी में वाकयात हो रहे हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, बस इतना ही है। यानी मुश्किल है, आसानी है, ये असल में एक अपॉर्चुनिटी है। ना तो मुश्किल सजा है, ना आसानी जो है वो कोई जजा है। जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है वो ये कि ये सारा पार्ट ऑफ द टेस्ट है, और इसमें जो हमारी ग्रोथ है वो असल में मुश्किल के आने से नहीं हो रही या आसानी के आने से नहीं हो रही। ये ग्रोथ प्राइमरली हमारे रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट है। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन? जो मुश्किल आई है, जो आसानी आई है, उस पर हमने क्या रिस्पॉन्स दिया है, इसकी बेसिस पर वो ग्रोथ होती है जी। और ट्रस्ट इन गॉड से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी ट्राई ये अलाउ कर रहा है कि ट्रांसपायर करे हमारी जिंदगी में, वो हमें अनेबल करेगा ग्रोथ के लिए, मॉरली इंप्रूव करने के लिए एज ह्यूमन बीइंग्स। एंड फाइनली वी ह्यूमंस हैव कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। इस पे कोई हिंड्रेंस नहीं लगाई गई टू चूज हाउ वी इंटेंड टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। हम रिस्पॉन्स की चॉइस जो हमारे पास है वो अनलिमिटेड है। हम जब चाहें ठीक रिस्पॉन्स, गलत रिस्पॉन्स, जैसे चाहें देना चाहें वो दे सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। दूसरी चीज जो इससे फिर निकलती है, यानी ये जो मैंने अभी आपके सामने कंस्ट्रक्शन रखी है, तो इसके नतीजे में जो चीज समझने की है वो ये कि मेरा जो आइडिया ऑफ सक्सेसफुल जर्नी है, ये जो जर्नी से मुराद सक्सेसफुल लाइफ है, लाइफ इन माय ओपिनियन, इन माय आईज, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड लाइफ टू बी अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनी। यानी हम असल में अपनी अपनी आसानी के लिए इसमें इसको तोड़ कर तो छोटी छोटी डेस्टिनीज बना लेते हैं। 3 दिन के बाद ये होना है, 4 दिन के बाद ये होना है, 1 हफ्ता खत्म हो जाना है, 1 महीना खत्म हो जाना है, साल खत्म हो जाना है, लेकिन असल में कोई डेस्टिनी नहीं है इसमें। बेसिकली ये हम सब की जर्नी है। तो व्हाट इज अ सक्सेसफुल जर्नी, इसको भी बिल्कुल ब्रीफली मैंने यहाँ पे बयान कर दिया जी। इसको भी देख लीजिए, इसके ऊपर भी गौर कीजिए, इस पर भी क्वेश्चन कीजिए, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कीजिए। आवर रिस्पॉन्सेज टू वेरियस सिचुएशंस, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, ईदर हेल्प अस ग्रो एंड बिकम बेटर और मेक अस रेट्रोग्रेड। या तो हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं अच्छे और बुरे सिचुएशंस के अंदर जिस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें वो हेल्प करता है, या तो ग्रोथ की तरफ लेके जाता है या पीछे की तरफ लेके जाता है। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर रिस्पॉन्सेज। बीमारी का आ जाना बजाते खुद फी नफसे ही हमें ग्रो नहीं कराता। बीमारी में सब्र करना जो है ये ग्रोथ का बायस होता है। ठीक है जी। नंबर दो ये कि बीइंग गॉड कॉन्शियस इज टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस एज इफ वी आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने आप को गॉड कॉन्शियस बनाने का मतलब ये है, ये जो फेथ इन गॉड है इसके नतीजे में आप गॉड कॉन्शियस तब बनते हैं जिस तक के आपकी जिंदगी इस तरह गुजर रही हो जैसा कि आप खुदा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट इज टू कॉन्टिन्यूली आस्क आवर सेल्व्स, व्हाट वुड गॉड लाइक मी टू डू इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन। जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है, इसमें अल्लाह ताला आपसे क्या चाहते हैं, खुदा क्या चाहता है, मेरा मेरा मालिक क्या चाहता है, ये सवाल करते रहना हमको गॉड कॉन्शियस बनाता है जी। अ सक्सेसफुल लाइफ इज अ जर्नी ऑफ सिंसियरली एक्सेप्टिंग वट वी हैव अंडरस्टूड टू बी द ट्रूथ। नंबर वन, जो कुछ हमें सच समझ में आया है उसको मानना, उसमें अपनी ईगो को, किसी अपने फायदे को, किसी अपने नुकसान को रुकावट ना बनने देना। नंबर टू, कीपिंग आवर सेल्फ ओपन टू रिव्यू एंड रिफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ट्रूथ। इसके लिए हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना, पॉजिटिवली वैल्यूइंग आवर म्यूचुअल डिफरेंसेस। ये म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें मौके फराहम करेंगे दूसरों के साथ इंटरेक्शन में कि हम अपनी जो सच्चाई जो हमने अभी तक समझी है उसको अपने उसको डिवेलप करें, इवॉल्व करें, इम्प्रूव करें। पॉजिटिवली वैल्यूइंग आवर म्यूचुअल डिफरेंसेज बाय लर्निंग फ्रॉम देम, बेनिफिटिंग फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट दैट गॉड सेंड्स आवर वे। वही मुश्किल और आसानी के हालात जो हमें मिल रहे हैं उससे बेनिफिट करना। एंड फाइनली लिविंग आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इंस्टिल्ड इन अस बाय आवर क्रिएटर। ये आगे चल के इसकी तफसील आएगी जी कि वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, और वो सारे हम इंशाल्लाह उसको वी विल बी टेकिंग दोज अप। लेकिन ये पांच चीजें बनती हैं जी। सबसे पहली बात ये कि जो सच्चाई आपके सामने आई है अभी तक, उसके बारे में आपका क्या रवैया है, नंबर वन। वो अगर आप उसको समझ गए हैं और जो कुछ समझे हैं उसके मुताबिक आपको बिहेव करना है। आप एक सिचुएशन में क्या चीज सच समझ रहे हैं और क्या गलत समझ रहे हैं, क्या अदल समझ रहे हैं, क्या बेअदली समझ रहे हैं, अदल का साथ देना है आपको, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिल को खुला रखना है इस चीज के लिए कि अगर जो मैंने सही समझी है बात वो ठीक ना हो तो मैं उसको ठीक कर लूं। और वो ठीक करने का क्या तरीका है कि उस डिफरेंस को जो मेरे और आपके साथ बीच में पाया जाता है, या दूसरों के साथ आपका या मेरा पाया जाता है, उसके मामले में अपने जहन को खुला रखना और उससे फायदा उठाने की कोशिश करना कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है वो और बेहतर हो। नंबर फोर ये कि बेनिफिट करना उन अपॉर्चुनिटीज से, हालात के लिहाज से, जब अल्लाह ताला मेरे साथ इंटरेक्ट करता है, जिस वक्त किसी शख्स के जरिए से, किसी हालात के जरिए से, इकोनॉमिक कंडीशंस के जरिए से, पॉलिटिकल कंडीशंस के जरिए से जब मुझे आजमाता है, तो अपने आप को उस उसमें बेहतरी की तरफ लेके जाना, वो रिस्पॉन्स देना जो आप समझते हैं कि मैं खुदा को दे रहा हूं। एंड फाइनली लिविंग आवर लाइव अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, अपनी जिंदगियों को प्रिंसिपल बेस्ड बनाने की कोशिश करना। ये है माई आइडिया ऑफ अ सक्सेसफुल जर्नी। एंड नंबर फोर, लिविंग बाय दीज गाइडलाइंस, इसका नतीजा क्या निकलता है? इट अलाउज अस टू क्लेंज आवर सेल्फ, अपने आप को हम हमारी हम अपनी तथहीर करते हैं, हम अपना तजकिया करते हैं, विच इन टर्न क्वालिफाइज अस फॉर द इटर्नल ब्लिस ऑफ गॉड्स पैराडाइज, जो कि हमें इस चीज का डिजर्विंग बनाती है फिर कि हम अल्लाह ताला की नेमतें पाएं आखिरत में। और आखिरी बात जो है उस सिलसिले में ये कि ऑल द मैंडेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम आर टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अस इन लिविंग अ गॉड कॉन्शियस लाइफ। वो सारे के सारे वो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं उन उन सच्चाइयों के जिनके नतीजे में हम ज्यादा से ज्यादा गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं, अगर हम उनकी स्पिरिट से उनको अप्रोच करें। ये जरूरी है जी, यानी इबादत में अगर स्पिरिट नहीं पाई जाती, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। कुरान मजीद इस बारे में एडमेंट है कि नमाज जो है वो बेहयाई से रोकती है, ठीक है जी, बुराई से और बेहयाई से रोकती है। अगर ये नमाज का नतीजा नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि देर इज समथिंग लैकिंग इन आवर प्रेयर्स, देर इज समथिंग मिसिंग इन आवर प्रेयर्स। वो स्पिरिट असल में पाई नहीं जाती है, हमें उसको दोबारा से इनकलकेट करने की जरूरत है उसी बेसिस पर। यानी नमाज जब ईमान से निकलेगी, जब खुदा की शुक्रगुजारी का एक जहूर बनेगी, खुदा की याद दहानी का एक जहूर बनेगी, तो असल में ये नताइज पैदा होंगे फिर उसके, वो खुदा कि जिसकी सिफात को हम देख चुके हैं पिछली दफा। ये प्राइमरली ये चीज है जी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करना। नंबर वन इज व्हाट इज माय आइडिया, व्हाट इज माय कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। नंबर टू इज माय उस कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के अंदर रहते हुए मेरी माय आइडिया ऑफ द सक्सेसफुल जर्नी क्या होगा। इसको मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज मिली थी, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप पढ़ लें। आई डोंट नीड टू रीड इट आउट, आप खुद इसको देखें एंड थिंक अबाउट इट। लाइफ एज एन ऑन गोइंग इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड गॉड। जिंदगी में जो रोज की जिंदगी आप गुजार रहे हैं, एवरी डे, एट नॉट जस्ट एवरी डे, एवरी मोमेंट, उसको खुदा के और अपने दरमियान एक इंटरेक्शन समझना, ये है जिसको मैं फेथ कहता हूँ जी। और इसको बड़ा खूबसूरती से बयान किया है मदर टेरेसा ने। आई वुड लाइक यू टू रीड इट अपने अपने आसपास अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको भी सुना दें। लेकिन दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, एक मिनट देकर इसको पढ़ लीजिए आप, एंड देन वी कैन क्लोज द सेशन इंशाल्लाह। जी आई
अस्सलाम
थिंक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
वालेकुम, इजाजत हो तो कुछ गोश गुजार करूं। मैंने हैंड रेस किया था, इशारा नहीं मिला तो चुप रहा।
अच्छा जी, अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, मैं असल में ये मेरे सामने ये जब होता है ना जी डिस्प्ले शेयर की होती है स्क्रीन, तो आई कांट सी।
जी, तो अगर इजाजत हो तो जैनुल आबेदीन अर्ज कर रहा हूँ अटलांटा से
जी
कुछ।
सर,
सबसे पहले तो आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है कि ये इंटरेक्शन आपने रखा है। मेरी अदना राय में ये जो इंटरेक्शन है फेथ बेस्ड, ये वल्लाहु आलम, ये खिलवत में जो जिक्र अस्कार हम करते रहते हैं, दिस सीम्स टू मी लाइक वे मोर देन दैट, यू नो आई एम नॉट जजिंग एनीबडी हियर। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था और इसके साथ कुछ अर्ज ये करना चाहता हूं मैं कि आपने बहुत बेहतरीन, बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट आपने एंड में दिया है कि लाइफ इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड द क्रिएटर। बहुत यही है, बस ये है। अब इसके अंदर एक चीज जाहिर ये होती है मोहित साहब, डायनामिज्म, नॉट स्टैग्नेशन। जमूद नहीं है, डायनामिज्म है, हरकत है। अब इसको कुरान किस तरह से अल्यूट करता है, किस तरह इशारा देता है, इससे पहले मैं, हाँ चलिए इसी को मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा, दो आयते हैं, फिर मैं कुछ किताबों की तरफ इशारे करूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अल्लाह के नाम आला है, अरफा है, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, बनाया और सुधारा, रफली कह रहा हूं, बनाया सुधारा, वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, और फिर कदर बनाई, कदर बनाई यानी रफ कदर बनाई। अच्छा, अब ये कदर हम यहाँ एवरी संडे मॉर्निंग फजर के बाद हलखा करते हैं, जिसमें डाइवर्सिफाइड ग्रुप है बहुत, वहां किताबें पढ़ते हैं हम, मेनली इमाम इब्ने कय्यिम की किताब पढ़ते हैं, किताबें, ये शागिर्द है इमाम इब्ने तैमिया की, और बहुत जबरदस्त किताब है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये अरबी में है, इंग्लिश में बड़ा भूडा तर्जुमा है इन लोगों का, उर्दू के मुझे पता नहीं है, होगा उर्दू में अच्छे होंगे तर्जुमे, लेकिन एक किताब है इनकी जो शाहकार है। मैं अपनी अदना राय में समझता हूँ मोहित साहब कि हर तालिब इल्म को बचपन से जब मदरसे में डालते हैं या स्कूल में डालते हैं वगैरह, तो ये जो टाइटल है अल-कदा वल-कदर,
जी
अल-कदा वल-कदर, उसके दिमाग में बिठा देना चाहिए कि कदर कितनी डायनेमिक है। कदर ऐसी नहीं है कि अल्लाह ताला ने बना दिया और ये अब चेंज होने वाली है ही नहीं, ऐसा ये इशारा नहीं है वहां पर। इसको मुख्तलिफ उलमा ने हदीस के जरिए से भी, कुरान के जरिए से भी, जैसे मैंने कद्दर फहदा एक बनाया, रफ रफ आपको एक कदर बनाई, जो अल्लाह आलिम है उसके, पूरे तरह से जानते हैं आप क्या करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला रोकते नहीं है आपको। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, रेंगता हुआ बच्चा है, अगर हम उसके सामने से गेंद को रोल कर दें तो क्या हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये बच्चा उसको देखेगा या नहीं देखेगा? मुमकिन है देखेगा, मुमकिन है नहीं देखेगा, पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन अल्लाह को पता है कि वो देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन अल्लाह रोकेंगे नहीं उसको। एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपसे, तो ये जो कदर बनाई है अल्लाह ताला ने, ये बहुत डायनेमिक बनाई है। ये जो आपने कहा ना इंटरेक्शन, इस कदर को हम लेकर चल सकते हैं अल्लाह से कॉन्वर्जेशन के जरिए से, कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कभी आपने बड़ा अच्छा कहा था, कभी मोहब्बत के पहलू से मैं बात करता हूँ अल्लाह ताला से, कुछ सिचुएशन से गुजरता हूँ, मुझे पता है कि वो टेक केयर कर रहा है, मुझे पता है इसका इसका एंड अच्छा ही होगा, लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे मालिक से, रब्बे कायनात से, रब जो पालन पालने वाला है, रब्बे कायनात से कह रहा हूं कि तकलीफ हो रही है मुझे, इसको आसान कीजिएगा। لیکن میں وہ جو لیسن مقصود ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے لیسن دے رہے ہیں, مجھے آپ گرو کر رہے ہیں, بیسیکلی یو آر اپلفٹنگ می, بٹ دا پروسیس سمٹائمز از گیٹنگ ٹو ڈیفیکلٹ. اوکے, اگر ڈیفیکلٹ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس سے برداشت کی بھی طاقت دیجیے. اس سے منحرف ہونے, اس سے ہٹنا, اس سے بچائیے مجھے بس, ورنہ تو راستے تو دونوں بھی ہیں. آدمی بغاوت بھی کر سکتا ہے, آدمی بغاوت بھی کر سکتا ہے, تو اس بغاوت سے مجھے بچا, اور اس بغاوت سے بچانے والا تو ہی ہے. میری اس بغاوت سے مجھ سے بچانے والا تو ہی ہے.
بالکل,
میرے نفس کے حوالے مت کر تو مجھے اس میں. جیسے بہترین کہا کہ مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا, ہو سکتا بعد میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے, تو میں چاہتا تھا کہ آپ ہی کی باتوں کو تھوڑا سا یاد آ گئی تو یہ دو ریفرنسز کے ذریعے سے آگے بڑھاؤں. اگر موقع ملے گا تو جو ابھی ہوں میں کچھ کہوں گا, ورنہ میں سنتا رہوں گا.
بہت شکریہ جی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے جی. قرآن مجید میں ایک واقعہ پورے کا پورا نقل ہوا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بتایا, بنی اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ لکھ دی گئی ہے, تمہارا اب کام صرف یہ ہے کہ اپنے بازو اور اپنے ٹانگیں استعمال کرو اور اس میں انٹر ہو جاؤ. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ڈیفینس ہونا تھا اس کے اوپر تمہیں اگریسولی مقابلہ کرنا ہے. یہ جب ان کو بتایا گیا اور انہوں نے جو اس کا رسپانس دیا حضرت موسیٰ کو جو کہا وہ یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ جو فلسطینی ہیں, فلسطینز جو ہیں, دے آر ویری اسٹرانگ اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ اور دا کریج ٹو فائٹ دیم. جب یہ کہہ دیا تو پھر دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تمہارے لیے یہ سرزمین جو ہے یہ 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے. تو اصل میں یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا سچویشن دیٹ وی آر فیسڈ وتھ جو ہماری ایلیویشن کا باعث بنتی ہیں. ہماری ایلیویشن کا باعث ہماری مورل اڈھیرنسز بنتی ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اپنی اخلاقی معاملات میں اخلاقی لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک قدر, جس کو آپ تقدیر کہہ سکتے ہیں, ایک ڈیسٹنی اس صورت میں ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ایک اور ڈیسٹنی ہے پھر. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ہاؤ وی رسپونڈ ٹو دا سچویشن, اور اسی کے مطابق ہماری آئندہ زندگی کے ٹیسٹس بھی ہونے ہیں. بہت شکریہ جی زہر صاحب, جزاک اللہ جی.
السلام علیکم موئی صاحب. آئی انڈرسٹینڈ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں اللہ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے, اللہ کر رہا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. یہ تو مجھے فائنلی سمجھ آ گئی. تو آئی ڈیڈ اسٹرگل بیکاز وین یو آر سفرنگ یو ونڈر ہاؤ کین اٹ بی اینی بہتری ان اٹ. بٹ میں آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ون اور ٹو تھنگس ٹو یو. کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ازمائشیں آتی رہتی ہیں, you know, if it's not one, it doesn't finish another one. And it's like one continuous process, one small, one big. Some people don't have the capacity like others to have that much sabr or strength to face it. This is one thing. Secondly, people have different thresholds of bearing suffering. And lastly, inshallah, I do and I'll continue to do as Allah wants me to. But very often it occurs to me, is there any way I can be sure that I will succeed in the next life? Allah will accept my du'as. Allah will forgive my mistakes. All these things keep occurring to me, so I appreciate your guidance regarding this. Thank you.
You're most welcome, جی. ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو میری زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں ये असल में इट इज ऑब्वियसली व्हेन वी से दैट दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड दैट वी हैव अंडरस्टूड एंड द कुरान हैज इनफॉर्मड अस अबाउट देम, तो ये फिर वो खुदा दे रहा है और वो खुदा अपने इल्म, अपने हिकमत, अपनी रहमत, वो सब कुछ उसके साथ शामिल है जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये सारी आजमाइशें। और ये जो एस्पेक्ट है कि मेरी कैपेसिटी जो है वो कम है या ज्यादा है या किसी की कम है या किसी की ज्यादा है, ये भी असल में अल्लाह ताला का फैसला है कि वो किसको किस आजमाइश में किस वक्त डालेगा। इसका इसका और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी यू नो बी अफेक्टिव हियर, इट इज ओनली गॉड्स नॉलेज, गॉड्स डिसीजन। इसलिए इस पर एतमाद रखें। यही वजह है कि मैंने उसमें जो एक शिक ऐड की है वो ये है कि ट्रस्ट इन गॉड का मतलब क्या है, कि अल्लाह ताला जो मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरी बेहतरी के लिए और मुझे एलिवेट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए जिधर, तो पिछली दफा आपको याद होगा आसिफ साहब ने भी, जैन साहब ने भी शायद कुछ बातें इस तरह की फरमाई थी कि जिसमें दे एक्चुअली कुड सी समथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये जो मौके होते हैं जिंदगी में ये बहुत ज्यादा नहीं होते, यानी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो तब होते हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा नोट करें, लेकिन अक्सर औकात ये सिचुएशन नहीं होती कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर से क्या अच्छाई पैदा हुई है, बल्कि वो सटल होती है और वो सटल ही रहती है टिल आवर एंड ऑफ लाइफ। जब ये सिचुएशन होती है तो वो मौके होते हैं। देखें ये कुछ मौके ऐसे हैं जिस तरह से आसिफ साहब ने बयान फरमाया था, वो मौके वो हैं कि जिधर मुझे मालूम हो गया। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मैं मिसाल आमतौर पर दे देता होता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप पेड़ के साए में लेटे हुए हैं एंड यू आर रेस्टिंग एंड यू आर रियली एंजॉयिंग योर रेस्ट, और किसी ने आपको पुकारा है एंड यू वेक अप, उठते हैं आप, उठ के तो उसकी तरफ जाते हैं। जब आप उधर पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि नहीं, यहाँ पर तो असल में इसको गलती हुई है, ही नेवर मेंट टू कॉल मी, इट वाज समबडी एल्स इन हिज माइंड। और आप बड़े इरिटेट होते हैं एंड यू गेट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, यू आर रेस्टिंग और ये क्या किया, एंड देन यू गो बैक टू दैट ट्री, और उसके पास जब पहुंचते हैं तो यू रियलाइज दैट देयर वाज अ ट्रक व्हिच क्रैश्ड इनटू द ट्री, और अगर आप वहां पे होते तो इट वुड हैव क्रश्ड यू एंड यू सडनली रियलाइज, आपको जहन में आता है कि ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया है या नेचर ने बचा लिया है, वट एवर सिचुएशन ये वाली जो है ये क्लियर हो गई है। यहां पर अब फेथ इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर असल में आपको बता दिया अल्लाह ताला ने, सामने रख दिया है कि इसमें मैंने तुम्हारी क्या बेहतरी आई थी। बहुत सारी जिंदगी में दूसरे मौके आएंगे जिस पर अब आपको इस बात को जहन में रखना है, यानी ये अंडरस्टैंडिंग जो आज हम शेयर कर रहे हैं ये भी रखनी है, और इस तरह के मौके जिधर आपको मालूम हो गया है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे कैसी कैसी नाजुक सिचुएशन से बचाया हुआ है, ये भी सामने रखते हुए अब आप ये फैसला करेंगे कि ये भी फिर यहां पर भी दो आई डोंट नो अबाउट इट बट गॉड्स नॉलेज, हिज विजडम, हिज मर्सी, हिज ओमनिपोटेंस एंड हिज ओमनिशियंस are all working together to do something good for me and for others around me because God loves everyone, not just me. So, ये चीज़ एक तो ज़हन में रखनी है कि आजमाइश खुदा ने डिसाइड करनी है और खुदा आपकी कैपेसिटी को, मेरी कैपेसिटी को मेरे से ज्यादा बेहतर जानता है, नंबर एक। दूसरा जो आपने सवाल किया वो कुछ मैं मिस कर गया हूँ, वो प्लीज जरा फिर से कर दें, एक दफा रिमाइंड करा दें तो आपका बहुत शुक्रिया।
एक तो ये मैंने जैसे कहा कि एवरी वन डजंट हैव द सेम स्ट्रेंथ फिजिकली इमोशनली टू टेक द पेन। एंड फाइनल क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल दिस, इज देयर एनी वे आई कैन बी हैव सम श्योरनेस दैट आई विल गो इनटू हेवन, गॉड विल फॉरगिव माय सिंस, ऑल दैट आई हैव सफर्ड, आई विल गेन हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट लाइफ। आई नो देयर आर नो फाइनल आंसर्स बट
जी, देर इज एब्सोल्युटली नो सर्टेनिटी, बट द सर्टेन प्रिंसिपल, द मोस्ट सर्टेन प्रिंसिपल इज दैट दोज हु आर सिंसियर विद गॉड एंड हु आर डूइंग थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, फॉर प्लीजिंग गॉड, दे आर गारंटीड सक्सेस। नाउ वी गो थ्रू लाइफ विद अप्स एंड डाउन्स इन आवर फेथ, ठीक है जी, कभी कभी बहुत स्ट्रांग होता है, कभी कम हो जाता है, कभी हम बिल्कुल क्लियरली चीजें इसलिए कर रहे होते हैं कि ये अल्लाह ताला को राजी करना है, कभी अपने अंदर भी शक पैदा हो जाता है। तो ये जो वो एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, और इन कमजोरियों के बारे में हर वक्त हमें अल्लाह ताला के पैगंबर की भी जो हिदायत है वो यही है, और कुरान मजीद भी बार बार ये कहता है कि तुम अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहा करो, अपनी माफ़ी मांगते रहा करो, और वो यकीनन माफ कर देगा। यानी सिंसैरिटी मैंने पैदा करनी है, मेरी तरफ से एफर्ट होनी है, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास जो गारंटी है वो इन प्रिंसिपल है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए अगर हो जाती तो फिर असल में कंप्लेसेंसी पैदा होने का चांस था, बिकॉज आई एम स्टिल अलाइव। अपने लिए मुझे एज सून एज दिस डोर क्लोजेज, दिस डोर ऑफ लाइफ क्लोजेज, दिस इज शट डाउन, तो वो जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहां पे सर्टिनिटी भी पैदा हो जाएगी। लेकिन ये यकीन रखिए कि अगर मेरी तरफ से सिंसियर एफर्ट होगी तो अल्लाह ताला उसकी बहुत कदर करने वाला है, बहुत ज्यादा कदर करने वाला है। यानी आप यहाँ पर इंसानों के साथ उसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कितना कदर करने वाला है।
तो वो सब जो भी आजमाइश आती है, इवन इफ आई समटाइम्स फील कि दिस इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, आई हैव टू एक्सेप्ट, यू नो, Allah has put it so he knows that I should be able to handle it, right?
देखिए, हम कभी कभी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट जनरली इंसान कभी कभी थोड़ा दिला हो जाता है, वो यूं समझ लें कि वी लूज आवर हार्ट, हम डिसहार्टन हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वी गो थ्रू इट। अगर हम इफ वी डोंट you know, end our lives, we go through the situation and we wake up the next day again. और अगर हम ये इस चीज पर गौर करें तो इसका मतलब है कि जिस चीज को मैं beyond my capacity समझ रहा था वो असल में beyond my capacity नहीं है। जो problem है, जो मुझे beyond my capacity लगती है, वो अभी तक ये जो पूरा concept मैंने आपके साथ share किया है, ये internalize करने में, ये एक दफा सुन लेने से internalize नहीं होगा जी। ये इंटरनलाइज तब होगा जिस वक्त मैं इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। मुझे पिछले हफ्ते एक मेरे क्लाइंट ने ये कहा बात करते हुए कि ये सिचुएशन जब पेश आई मुझे, तो मुझे बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा चढ़ा, और फिर मुझे याद आया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये सिचुएशन पेश आ रही है, और मैं एकदम से, मेरा गुस्सा भी ठीक हो गया, मेरा दुख भी कम हो गया, एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू गो थ्रू इट, ये जानते हुए कि अब ये फिर मुझे इसके, इसको जिंदा रखें अगर थॉट को, तो ये आपको बहुत हाई स्पिरिट्स में ले जाएगी फिर इंशाल्लाह। यानी दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू गो थ्रू दीज अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स असल में देखिए आने ही है, ये जिंदगी की यही आजमाइश है। ठीक है जी, जिन लोगों के बारे में आपका या मेरा ये ख्याल है कि इनको कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, असल में वो हमारी ख्याल की, हमारी इल्म की गलती है, हम जानते नहीं। लोग, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन, हमने इसके अंदर हौसला रखना है। और ये चीज इससे शायद समझ में आ जाए कि जब मैं इसको कहता हूं कि फेथ असल में मोटिव कैसे बनता है, फेथ मोटिव ऐसे बनता है, ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स तो असल में कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, वो हमने देखे नहीं है। वो मेरा दोस्त एक कहा करता था कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, और उसको मैं हमेशा जिंदगी के हवाले से ही जवाब दिया करता था कि व्हाई डोंट यू जस्ट स्पेंड ऑल योर वेल्थ राइट नाउ एज इट इज, बिकॉज दिस ब्रेथ दैट यू हैव इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश व्हिच इज गोइंग टू कम। सो द थिंग इज दैट वी ऑल ऑफ अस आर बेसिकली लिविंग फॉर द फ्यूचर, ऑल ऑफ अस। हम, अगर ये पता हो हमें कि जिंदगी जो है वो गारंटीड हो कि ये कल खत्म हो जानी है, तो बहुत से हमारी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फील ही नहीं होंगे। इसको इसको भी समझना चाहिए कि हम बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू लाइफ, एंड व्हेन वी डेवलप दिस फेथ, दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी फेथ, तो उसके नतीजे में असल में हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो इस मोटिव से गुजरनी शुरू होती है जी। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट थिंग। वरना आप जानते हैं कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये बेसिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट का है। मेरे हिसाब से ये वो पॉइंट है मोटिव का कि जिधर कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलती है जब हम मानते हों बिलीव रखते हैं, और बिलीफ रखने का मतलब क्या है मैंने इसको बताया है यहाँ पे।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
सर आप खैरियत से
जी? अल्लाह शुक्रिया, शुक्रिया।
सर बहुत ही जबरदस्त किस्म के पॉइंट थे और बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही जबरदस्त किस्म के फेथ को झंझोड़ने वाले थे और मैं तो कांप के रह गई इन सारे पॉइंट्स को देख के, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जो मैं समझती हूँ कि फेथ के मुताबिक मैंने अपना रखा है, लेकिन इसमें से तो इतने पॉइंट्स में भूल जाती हूँ कि जैसे आपने कहा कि चाहे इंसान की वो मदर टेरेसा वाली बात कि वो खुदा और इंसान का मामला है, इंसान का नहीं है, और होता यही है कि इंसान की तरफ से फूल आ रहा हो, पत्थर आ रही हो, गाली आ रही हो, ये सब आ खुदा की तरफ से रहा होता है, लेकिन हम जवाब इंसान को दे रहे होते हैं। तो मैं तो कांप के रह गई सर, और हमेशा आपकी इस क्लास से मेरा ईमान बहुत बढ़ता है, और बहुत मैं आपको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है इसकी बेहतरीन जजा दे आखिरत में भी और दुनिया में भी, आपको आफियत से रखे। तो सर इसमें यह है कि जैसे वो पिछली दफा भी रह गई थी मैं, तो मैं सोच रही थी कि मेरा जो है मतलब फेथ के लिहाज से मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, तो उसमें मैंने जो है आपको एक किस्सा सुना रही थी जो रह गया था बीच में, अभी भी पता नहीं कनेक्शन में आपको आवाज आ रही है कि नहीं मेरी।
नहीं आ रही है जी, आ रही है, आज तो काफी अच्छा लग रहा है कनेक्शन।
अच्छा, तो वो मैं आपको अपनी बेटी का मैं सुना रही थी कि वो मैं चाह रही थी उसको कि मैं उसको किसी तरह नाश्ता भेज दूं, तो वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो मैंने अपने तौर पे मैं सोची थी कि मैं 100% कादिर हूँ कि मैं उसको खिला सकती हूँ ये ब्रेकफास्ट, और मैंने उसको कहा था कि तुम्हें हर सूरत खाना है। उसने कहा मैं पिक नहीं कर सकती जाते हुए, तो आप रहने दें। तो मैंने कहा अच्छा मैं बेटे को भेज रही हूँ, तुम्हारे घर दूसरी गली में रहती है, ड्रॉप कर देगा। वो उसको देकर भी आ गया। फिर मैंने कहा तुम रास्ते में खाना उसको, तो कहने लगी ठीक है रास्ते में खा लूंगी। फिर उसके बाद जब वो पहुंच गई यूनिवर्सिटी, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो कह रही मैं तो उसका एक जर्रा भी नहीं खा सकी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, तो कहने लगी कि मेरे दांत में इतना दर्द था कि वो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, और जब डेंटिस्ट के पास मेरी फिलिंग हुई तो मैं उस दोनों तरफ फिलिंग हुई और मैं दोनों ही तरफ से खा नहीं सकती थी, मैं उसका एक जर्रा भी ना चख सकी, और मैंने वो किसी और को दे दिया। और मैं चाह रही थी कि कुछ चलो एक बाइट ही चख ले, मुझे बताए तो सही मैंने इतनी मेहनत से इसके लिए बनाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह तू अगर किसी को एक जर्रा ना देना चाहे तो मैं कितना ही चाह लूं कि वो एक जरा चख ले, वो नहीं चखेगी, वो चख ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी चेन के साथ चेन जुड़ी हुई होती है, पीछे खुदा ही होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो था वो खुदा ही, और तब भी खुदा ही था बेशक, उसने आजादी इतनी दी हुई है फ्रीडम कि हम कहेंगे देर इज नो गॉड और द गॉड इज डेड, तो वो सामने नहीं आता फिर भी अपना डिफेंस करने के लिए। तो वो मुझे इतनी उस हुई ना कि मैंने कहा अल्लाह ताला वाकई अगर तू ना देना चाहे तो मैं कुछ एक जर्रा नहीं पहुंचा सकी उसको, जिसको तूने देना चाहा था मैं तो नहीं देना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि तेरी मर्जी थी उसको कोई अहमियत भी नहीं थी उसके नजदीक उस चीज की जो मेरी बेटी के नजदीक थी, लेकिन खुदा ने उसको पहुंचाना था, उसको नहीं पहुंचाना।
सही बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है ये चीज, इसको याद रखना। असल में जो आपने बात फरमाई है मैं चाहता हूँ कि उसको जरूर जेहन में रखिये, एक गलत फहमी हो सकती है जी मेरी इस प्रेजेंटेशन से, मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल्कुल क्लियर रहे जी। वो ये कि ये जो मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन अभी शेयर की है ये मेरा भी आइडियल है, ये मेरी इस वक्त की हकीकत नहीं है, मैं इसको एस्पायर करता हूँ, मैं इधर पहुँचना चाहता हूँ, और मेरी ये गुजारिश है कि आप सब भी अगर इसको ठीक समझते हैं तो इसकी एस्पिरेशन दिल में पैदा करें कि हमने खुदा को इस तरह याद रखना है अपनी जिंदगी में, यानी इसमें देर इज नो संडे ऑफ, इट इज 24/7। आप जब सुबह उठते हैं उस वक्त से लेके जब तक सोते नहीं है उस वक्त तक खुदा जहन में ताजा रहे, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, ये हमारी अल्टीमेट एस्पिरेशन होनी चाहिए। अगर हम ये कर लें तो यकीन करें कि कामयाबी है। और मैं ये अर्ज करूं आपसे कि जब कुरान मजीद नमाज के बारे में बात करता है, हजरत मूसा को जब सूरह ताहा में बताता है और ये कहता है कि अकिम सलाता लिज़िक्री, उससे यही मुराद है कि अपने अपनी जिंदगी में खुदा को याद रखने के लिए नमाज का एहतमाम करो। ये बात कि खुदा जिस वक्त जिक्र की बात करता है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, तो इसको भी बहुत क्लियरली समझ लें। यानी कभी भी जिन लोगों को हम याद करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर मुझे अगर मेरी वालदा याद आती है तो मैं वालदा 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 नहीं करने लग पड़ता, यानी या उनका नाम नहीं लेने लग पड़ता, बल्कि मुझे उनकी उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स याद आती है, मुझे उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस याद आते हैं। अल्लाह ताला के साथ जो जिंदगी में इंटरेक्शंस अब तक हो चुके हैं आपके, उसमें जरा खुदा को एक्टिव करके वो इंटरेक्शंस याद कीजिए। और फिर देखिए, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये बेसिकली दिस वुड बी अ कॉन्वर्सेशन विद आवर सेल्व्स। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये मैं पहले कॉन्वर्सेशंस के टॉपिक में भी एक दफा शायद कह चुका हूं कि आप जो जिंदगी में दिन में जो जिन गुफ्तगुओं में घिरे हुए हैं, असल में वही आपकी सोच का और वही आपकी कंस्ट्रक्शन का हिस्से बनने लग पड़ते हैं। उन कॉन्वर्सेशंस को अच्छा करना है आपने, यू हैव टू सेलेक्ट दोज कॉन्वर्सेशन, चूज दोज कॉन्वर्सेशंस जो आपकी जिंदगी में बेहतर असर डाले। दिस इज व्हाट वी शुड टारगेट। जी बहुत शुक्रिया शबाना, आपने जो ये बात फरमाई, मैंने असल में उसके सिलसिले में कहा कि ये चीज याद नहीं रहती है, ये मुझे भी याद नहीं रहती है, यानी इससे डिस्करेज नहीं होना, इसके बाद फिर से हौसला करना है और फिर से अपने आप को खड़ा करना है और इस अज़्म के साथ कि मैंने अब याद रखना है, अब नहीं भूलना है और इसकी कोशिश जारी रखनी है। बहुत शुक्रिया जी,
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
आसिफ साहब, आप अपना सवाल पूछिए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सर। सर असल में मैं ये जो आपने प्रेजेंटेशन अभी जो दी है उसमें ऑन आई मीन इमीडिएटली आई कैन व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इसके, जब हम ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्ड जब करते हैं किसी सिचुएशन को, तो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में हम आजाद हैं। तो अब ये अगर हम अपनी फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मुश्किलें भी आती हैं, आसानियां भी आती हैं, और समटाइम्स मुश्किलें कॉन्टिन्यूसली रहती हैं जब तक कि हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, कुछ लोग चले नहीं जाएंगे। तो जैसे आसानियों के केस में तो हमें समझ आती है कि एक आजमाइश है और उसमें हमें ये देखना होता है कि हम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक आसानियों के केस में, जो डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो उसमें ये अमूमन ये देखा गया है कि हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक, अगर हम बिलीव करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो वो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक जरा थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम डेफिनेटली जब मुश्किल कोई आती है, जैसे कोई बीमारी आती है या कोई मौशी तौर पर हम मुश्किल में घिर जाते हैं, तो हम एक तरह से अल्लाह ताला से ताल्लुक हमारा जब बढ़ना शुरू होता है, और अगर शुरू हो, तो हम एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि वो है दुआ। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अब जाहिर है आसानियों के केस में तो हमें ये सिचुएशन फेस ज्यादातर नहीं करनी पड़ेगी कि चलें ठीक है जी, आसानी है, पैसा भी है, सेहत भी है, हैसियत भी है, ओहदा भी है, जो भी है। लेकिन जब मुश्किल आएगी, हमसे कोई ओहदा छिन जाएगा या हमें कोई बीमारी आ जाएगी या हमारा प्यारा कोई हमसे बिछड़ेगा या मर जाएगा या बीमार होगा, या तो उस केस में जो दुआ का एलिमेंट है, क्या हम उसमें ये कह सकते हैं कि यार दुआ ये तो बेसिकली इस दुनिया में के लिए, हो सकता है कि इस दुनिया के लिए तो ये हो ही ना, ये मतलब आखिरत में जाके हमें पता चले कि अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं कि एक प्यारा जो है बहुत बीमार है वो ठीक हो जाए, हम चाहते हैं कि एक एक एक, एक हमारी जो मुआशी मुश्किल है और हम जो मुसलसल 15-20 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल हमारी जो है ना, हम इसे ओवरकम कर लें। तो उस केस में जो रिस्पॉन्ड है अल्लाह की तरफ से, वो क्या हो सकता है, यानी उसने क्या तालीम दी है इस मामले में अपने पैगंबरों के जरिए कि जी कि दुआ क्या तकदीर बदल सकती है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जी कि एक बंदा बीमार है तो वो ठीक हो जाए और मैं दुआ कर रहा हूँ और पूरे जोरों शोर से कर रहा हूँ, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उस केस में हमारा फेथ क्या होगा? मतलब मेरा आई डोंट नो कि मैं अपना सवाल पहुंचा
जी, मैं समझ रहा हूँ। असल में देखिए, दुआ जो है ये मेरी बंदगी का इजहार है, यानी व्हेन आई टर्न टू गॉड एंड आई से कि मैं अपने प्यारों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक तेरी तेरी मदद नहीं होगी, और मेरी ये जरूरत है, मेरी ये इमोशनल जरूरत है कि इसको ठीक कर दे, एंड ओनली यू कैन डू इट, ये मेरी बंदगी का इजहार है। दुआ तकदीर बदल सकती है? नहीं, मुझे तकदीर का पता नहीं है, यानी लेट से इफ आई डोंट नो कि इस बीमारी के अंदर से मेरी वालदा निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, या वो इसके अंदर खत्म हो जाएंगी या सेहत याब हो जाएंगी, तो फिर जो कुछ भी होगा मैं उसी को तकदीर समझ लूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि तकदीर के बारे में अपेरेंटली, यानी मेरी तकदीर के बारे में जो चीज मुझे समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह ताला इसको कंटिंजेंट रखते हैं मेरे रिस्पॉन्सेज के साथ। यानी एक तकदीर वो है कि अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल दूं तो नमूदार होगी, और एक तकदीर वो है कि अगर मैं सच बोल दूं तो नमूदार होगी। यानी ये जो कॉन्टिंजेंसी है इसके नतीजे में, जिस जो मैंने आपको मिसाल दी है ना जी अभी, के सूरह मायदा में बनी इसराइल को ये बताया गया है बहैसियत एक कौम के कि तुम अगर उठोगे खुदा के रास्ते में और इस जंग के लिए तैयार हो जाओगे तो ये जो सरजमीन फलस्तीन है ये तुम्हारे लिए लिख दी गई है। यानी तुम्हारे लिए लिख दी गई है का मतलब ये है कि इट इज रिटन डाउन दैट यू विल गेट इट, और उन्होंने इनकार कर दिया। और अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में जो बात कही वो ये है कि अब ये तुम्हारे लिए 40 साल तक हराम कर दी गई है, नोबडी विल बी एबल टू एंटर इट। यहां तक कि हजरत मूसा दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो सिवाय वो उन दो लोगों के जिनके बारे में कुरान कहता है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम हौसला करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा, बाकी सब लोग पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। वो जिनके लिए लिख दी थी वो असल में उनके रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट थी। तो एक तो ये तकदीर के हवाले से, तो ये कि मैं जानता नहीं हूं, वहां पर तो तकदीर बता दी थी इसलिए मुझे पता है कि वो फिर क्या हुआ, वरना तकदीर को मैं जानता नहीं हूं। इसलिए ये कहना कि तकदीर बदल सकती है नहीं बदल सकती, दुआ में भी अल्लाह ताला ये कहे कि अगर ये मांगेगा तो मैं दे दूंगा, ये पॉसिबल, मतलब जिंदगी के बारे में तो अल्लाह ताला ने लोगों की, मेरी भी आपकी भी मेरे प्यारों की भी जिंदगी के बारे में तो ये फैसला कर दिया कि अजले मुसम्मा इनको दी गई है, वो तो हो सकता है शायद चेंज ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में दुआ पर डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। ये वो सारी चीजें जिनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वट एवर ट्रांसपायर्स इन माई लाइफ, वट एवर वो मेरी दुआ के नतीजे में होता है या वो मेरी दुआ के खिलाफ होता है या मेरी मेरी दुआ के अलर रगम हो जाता है, ये सब कुछ जो है होता है वो खुदा ही की तरफ से है। और वो खुदा है कि जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कंट्रोल करता है, उसके अंदर हिकमत बेपनाह है, उसके अंदर रहमत बेपनाह है, उसके अंदर अदल बेपनाह है, वो कभी गलत फैसले नहीं करता। ये जो एस्पेक्ट और ये जो मेरा ट्रस्ट इस इन एट्रीब्यूट्स के नतीजे में डेवलप होता है, इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन माई लाइफ, दिस इज वॉट माई होल आइडिया इज। जी
अभी आपने कहा कि गलत फैसले नहीं करता, लेकिन गलत फैसले हमें पूरे सर्कल में देखने पड़ेंगे, मतलब सर्कल सॉरी पूरी लाइन करके देखने पड़ेंगे जिसमें हमारी ये जिंदगी और हमारी आइंदा जिंदगी दोनों शामिल हैं।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यानी देखें खुदा की जो रहमत है, यानी ये बात कि खुदा मेहरबान है, वो ये मैंने पिछली दफा ये बात की थी ना जी कि ये जो पैराडॉक्सेस होते हैं इनको रिजॉल्व करने से ईमान बढ़ता है। मैंने उसकी उसकी मिसाल दी थी कि देखिए मिसाल के तौर पर हम मानते हैं कि खुदा रहमत वाला है, बड़ा रहमान बड़ा रहीम है, लेकिन कितने सैकड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो गए सैलाब में और कितने सैकड़ों लोग मर गए, तो ये रहमत क्या है? इस रहमत को आपने पूरे सिनेरियो पे देखना है जो खुदा ने बयान किया कि यानी तुम्हारी जिंदगी जो है वो यहाँ पर तो है ही टेम्प्ररी, वो तो कभी एक आदमी मरेगा कभी हजारों मर जाएंगे, लेकिन वो बहरहाल मेरे ही पास आएंगे। और जो रहमत है उसका पूरे का पूरा जो स्कोप है या पूरे का पूरा कैनवस है वो खुदा के सामने वो पूरा है, सिर्फ इसको काट के नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री विद यू जी। मोस्ट वेलकम जी आस्था, थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम सर।
वालेकुम रहमतुल्लाह जी।
जी आपने एक पॉइंट बताया कि सच्चाई जो हमारे सामने आती है उसमें हमारा रवैया क्या है, तो जो सच्चाई जो आती है यानी हकीकत हर वक्त एक जैसी नहीं होती ना, कभी जो हमें लगता है जो हकीकत है वो वैसी दिखाई नहीं देती, तो उस वक्त हमें खामोश रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए या उस वक्त जो हमने रिस्पॉन्ड कर लिया उसके बाद जो हमें बात समझ आई तो उस पर फिर या निदामत हो या हमने सही कहा हो तो फिर उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। यानी हर वक्त आसानी और मुश्किल ही नहीं होती ना, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में होते हैं, तो वहां हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे जज नहीं बनाया। एक बात तो बड़ी मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आई एम नॉट सपोज टू बी डिसाइडिंग अबाउट एवरीथिंग, लेकिन जो चीज सामने आई है उसमें मौजूद इल्म के मुताबिक फैसला करना है। यानी जो ग्रे एरियाज भी हैं उनके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि उनको जाने तो जितनी तहकीक आपके लिए मुमकिन है, एज वाइज भी, एबिलिटी वाइज भी, कैपेबिलिटी वाइज भी, जितनी तहकीक मुमकिन है उसको करके तो यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर योर प्रेजेंट लाइफ। इस वक्त मेरे ख्याल में ये ठीक है, और कल अपने जेन को खुला रखें, लोगों से बातचीत में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उससे पूछते रहें, और कल अगर राय बदलती है तो अपनी राय को कभी अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें। ये एक बड़ा खतरा होता है जी, यानी कभी भी अपनी राय को अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें। आपको अपनी आइडेंटिटी अलग रखनी है, ये मेरी राय है और ये राय कुछ चीजों पर बेस्ड है जिनको मैं इस वक्त सही समझता हूँ, और अगर कल मेरी ये नॉलेज चेंज हो जाती है तो मेरी राय बदल जाएगी, मैं तो वही रहूंगा। ठीक है ना जी, ये वाला एस्पेक्ट जो है अपने अंदर हमें पैदा करना है, यानी ओपननेस ऑफ द माइंड, ओपननेस ऑफ द हार्ट, ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ जी, इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो।
जी सर, ये तो ठीक है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में मैं जानना चाह रही थी, जैसे रोज हम रूटीन लाइफ में जैसे होते हैं, किसी ने कोई बात कह दी तो अब आपने जैसे बताया कि हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है मेरे लिए, तो उसमें तो हम फौरी रिएक्ट कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हकीकत वो नहीं थी।
ये गलती हो जाती है जी हमसे,
तो वहाँ खामोशी अख्तियार करनी चाहिए।
वहां पर हमें खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं, और ज्यादती के जवाब में अगर कोई अपना है, देखिए हर मौके पर वो जो सूरह शूरा में कहा ना कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो उतनी ज्यादती कर सकता है, ये अपने प्यारों के साथ नहीं होती, अपने अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ये रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कोई ज्यादती कर दी है हम बात भी कर सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं सिचुएशन को, हम उनकी जज्बात की कैफियत भी समझ सकते हैं और दरगुजर भी कर सकते हैं, और ये जो दरगुजर करना है इसको अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और ये आपकी एलिवेशन का बायस बनेगा जी। लेकिन असल चीज जो है इसको जेन में रखना है आपने, ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको के अगर हम भूल जाते हैं तो वो दरगुजर करना मुश्किल भी हो जाता है और दरगुजर करने का उतना फायदा भी नहीं होगा। वो ये है कि मैं ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, दिस इज गॉड सेंडिंग दिस सिचुएशन टू मी एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू गॉड। ये वाला जो एस्पेक्ट है जितना जिंदा होता जाएगा हमारी मेरी आपकी जिंदगी में उतना हम इंशाल्लाह एलिवेट करेंगे अल्लाह ने चाहा तो।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह।
मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी।
जी सर,
हम ये जो आगे चलेंगे ना जी कोर्स में, इस कोर्स में प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ के, आप ये देखिएगा इंशाल्लाह हम इसमें बहुत सारी स्किल्स भी लेकर आएंगे कि हम ये जो रिस्पांस में हम कई दफा रिएक्टिव हो जाते हैं हम इसको कैसे अपने कंट्रोल में लेकर आए। इंशाल्लाह वी विल बी लर्निंग दीस थिंग्स।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं
जी? ठीक हूँ, आप सुनाएं आपकी सेहत कैसी है?
शुक्र अल्लाह का।
तो मैं, मुझे जो आपके इस आज के टॉक से समझ में आया कि हमारा जो है बेसिकली खुदा से इंटरेक्शन है हर रोज हमारा, तो मुझे इसमें ये लगता है कि हमारा एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इन द लाइक इन नमाज में, दुआ की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर वगैरह, और एक जो है वो हमारा इनडायरेक्ट रब्ता है, जैसे कि हमारी ऊपर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है और सिचुएशंस जिनसे हमें वास्ता पड़ता रहता है। अब जहाँ इंसानों के साथ वास्ता पड़ता है, इसकी बात काफ़ी डिफरेंट जगहों पे पहले भी लोगों ने की है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, हमारा लोगों के लिए बाइसेस भी होते हैं, हमारे कुछ एंगर्स भी हो जाते हैं, अच्छी फीलिंग्स भी होती हैं, और इसी तरह सिचुएशंस में हमारे ऊपर ट्रायल्स भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, तो इन सारी सूरत हाल में हमें जो आप उनका कहना है कि हमें थोड़ा उसको, जैसे आपने मदर टेरेसा का हवाला दिया, तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे किस तरह चाहता है बिहेवियर या रिस्पांस, किस तरह का आइडियल वो चाहता है हमसे, उसको हम जो है वो करें, शो करें, एग्जिबिट करें। बट हमारी ह्यूमन साइड, क्योंकि हम इंसान हैं तो ह्यूमन साइड हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़ाहिर है कि वो हमारे कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स कंडीशनड हैं कि मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी इस सारी अंडरस्टैंडिंग इनसाइड रखने के बावजूद भी एरर्स और गलतियां हम करते रहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन में, सिचुएशंस में फौरी तौर पे सब्र नहीं कर पाते, और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है हमें कि नहीं ये इस तरह नहीं, अल्लाह की रजा तो ये है, इस तरह से हमें अपने आप को करना है। और ये चीज़ के जो मुझे समझ को और आई है कि वो हमें यानी कि खुदाई सिफात को इसमें अपने अंदर सॉर्ट ऑफ
मुझे लगा है
करने की जरूरत है, विच इज वेरी आई थिंक हायर लेवल ऑफ एलिवेशन, कि हमने जो खुदा के लेट्स से के नाम पड़े हुए हैं अगर हम उस तरह से काइंड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो बल्ला क्या ही बात है। मेरा ख्याल इट टेक्स लाइफ टाइम स्ट्रगल, तो
बिल्कुल, एंड इट इज अ लाइफ टाइम स्ट्रगल, इट इज अ लाइफ टाइम,
यस जी। और मुझे लगता है कि इसमें जैसे मुझे जब क्लासेस ये वाली नहीं हो रही होती, या कोई भी मैं कुछ और भी कनेक्टेड हूँ कुछ फोरम्स पे जिसमें ग्रोथ से रिलेटेड चीजें हैं, जब मुझे लगता है कि ये एक ग्रुप एफर्ट इसके लिए हमें करनी पड़ रही होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं, अपने आप को भी याद दिलाते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रांग हमें रिमाइंडर एक दूसरे से फीडबैक से मिलता है, वो शायद मेरा ख्याल है अपने आप को अकेले इंसान रिमाइंडर रोजमर्रा जिंदगी में, बेशक एक हम प्लान भी करें हम नहीं दे पाते, तो नमाज भी या जो भी कोई ग्रुप इस तरह का है पॉजिटिव चीजों के लिए बना हुआ, पॉजिटिव सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आई कांट कीप माय सेल्फ ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट,
नोबडी कैन, नोबडी कैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे करूं, ये जो आपने बात शेयर की है ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने की है, ये कोई खास नहीं है आपके साथ थी, वी ऑल गो थ्रू दीज अप्स एंड डाउन्स। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा जी, कि ये जो हमारी जिंदगी है ना जी आउट ऑफ आउटसाइड द प्रेयर, ये भी असल में इस जगह पे पहुंचना है कि ये हम डायरेक्ट इंटरेक्शन समझ सकें इसको खुदा के साथ, यानी इट इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। जिस वक्त जब जब कुरान मजीद ये कहता है कि कोई खैर कोई शर तुम तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, ठीक है जी, तो किसी की तरफ से तकलीफ मुझे जो बाहर पहुंच रही होती है वो खुदा की तरफ से शील्ड उठेगी तो पहुंचेगी मुझ तक। इस चीज को मुझे अपने अंदर पैदा करना है कि ये नाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ये इस शख्स का रिस्पॉन्स है, इसने भी खुदा को रिस्पांस दिया है, खुदा ने मुझ तक पहुंचने दिया, अब मैंने भी खुदा को रिस्पांस देना है जो कि उस तक पहुंचेगा। लेकिन इन एवरी इंटरेक्शन वी मस्ट रिमेंबर दैट अगर यहां पर हम एज आई सी इट देर आर टोटल ऑफ 25 पीपल ओवर हियर, वी आर नॉट 25, वी आर 26, गॉड इज हियर। ये जो एस्पेक्ट है अपनी जिंदगी में इसको पैदा करना और इसको कंटिन्यूअसली रिमाइंडर देते रहना, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये आपके साथ खास नहीं है कि हम भूल जाते हैं जी। आप प्लीज जारी रखिएगा, आई एम वेरी सॉरी आपकी बात काट दी मैंने।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने एक अच्छी रिफ्लेक्शन मुझे दी है, और ये बिल्कुल जबरदस्त बात है कि इंक्लूजन ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन एंड इंक्लूजन ऑफ गॉड इन एवरी इंटरेक्शन, वो अल्लाह से भी कॉन्शियस हमारा जो है इंटरेक्शन हमें बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। हमारा बड़ा मैकेनिकल डे टू डे लाइफ में नमाज और उसका जो तरीका कार बन चुका है, एटलीस्ट मैं तो बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ कि पता नहीं कि अल्लाह ताला ने नमाजें कबूल भी करनी है कि नहीं, इतनी भाग दौड़ में जो हम पढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एवरीथिंग हैज टू बी मेड वेरी कॉन्शियस एफर्ट
अल्लाह।
जी जी,
तन्हाई में या फुर्सत में, तो उस टाइम मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है टेस्ट ना, या अल्लाह के साथ रिलेशन जो है उस टाइम तो कोई इम्तिहान नहीं होता ना। तो मैंने भी क्वेश्चन भी किया था, मिसाल के तौर पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कुरान पढ़ लूँ या मूवी देख लूँ, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे या अल्लाह से रिलेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं?
इफ यू आर वेरी टायर्ड, इफ यू, मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप बहुत टायर्ड, बहुत थके हुए हैं, तो उस वक्त कुरान ना पढ़े। सबसे पहले तो ये एक ख्याल रखे, कुरान मजीद को मैंने कॉन्शियस होके पढ़ना है। कुरान मजीद पढ़ना शुड बी कंसिडर्ड एज हार्ड वर्क एंड आई शुड बी रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क। कुरान मजीद को पढ़ते हुए मेरे जहन में सवालात पैदा होने चाहिए। कुरान मजीद गौर की किताब होनी चाहिए, पढ़ लेने की किताब नहीं होनी चाहिए। मूवी आप आधे जहन के साथ भी देख सकते हैं, देख लें। मेरी बात वाजे हुई जी? अगर तो सवाल ये पैदा हो गया है कि इस वक्त आई एम नॉट वेरी, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ हुआ है, तो चलो कुरान पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा ना करें। इस वक्त कुरान को पूरे जहन की तवज्जो से पढ़े, चाहे 10 मिनट पढ़े, इट डिजर्व्स दैट अटेंशन फ्रॉम अस। लेकिन बाकी जिंदगी के काम जो है, लोगों के इंटरेक्शन के अलावा बाकी जिंदगी के काम जो है, वो आधे जहन के साथ भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। एंटरटेनमेंट वगैरह, क्रिकेट का मैच देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसमें दो कंसर्न थे सर। एक तो मुझे लगता है कि मेरा माइंड ना ट्रेन हो जाता है, कि जब भी कोई मैं थका होता हूँ ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो म्यूजिक सुनते हैं। अब दिमाग को लगता है कि मैं मतलब थकान में बजाय अल्लाह को याद करने के म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। और दूसरा मैंने बताया कि मेरे लिए मुश्किल टेस्ट है जब मेरे पास ऑप्शन होता है, आज़ादी होती है, इख्तियार होता है। मतलब ऑफिस में चाहता हूँ बैठ कुरान पढ़ लूँ, कि ऑफिस का टाइम है तो मैं कंज्यूम करता हूँ, मुझे शायद अच्छा भी लगता है। बट हॉलीडेज में मैं लेट उठता हूँ। शायद पहले भी आपसे बात हुई थी ना, कि आपने बोला जो आप हैं संडे को हैं, आप संडे को अगर उठ रहे हैं 7 बजे तो देन यू आर द राइट पर्सन, या आप हो गए हैं उस
नॉट द राइट पर्सन। मैंने कहा नहीं,
आई एम सॉरी
जी। हां जी, यू आर द राइट पर्सन इंशाल्लाह।
थैंक्स फॉर दैट सर। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि फुर्सत में बड़ा मुश्किल टेस्ट हो जाता है, यकीन करें। मतलब आप मुझे ऑप्शन दें तो मैं 12 घंटे सो रहता हूँ आराम से, लेकिन ऑफिस जाना तो मैं सबसे पहले रेडी बैठा होता हूँ। तो सेम थिंग हैपन व्हेन आई एम अलोन एक्चुअली। तो उस टाइम पे अल्लाह से बात करने को मैं प्रीफर करता हूँ, या मूवी देख लूँ या कोई और चीज कर लूँ। तो मतलब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सर?
इसको इम्प्रूव ऐसे करें कि जो देखें आपकी जो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा रखें। यानी मुझे अल्लाह ताला के साथ इस वक्त मिसाल के तौर पर मेडिटेशन करनी है अपने सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इट शुड बी अ स्मॉल मेडिटेशन। शुरू में आप होलो सिंह को घंटे के लिए ना करें, ठीक है ना जी? एक घंटे की मेडिटेशन अवॉइड करें, वो आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी में जो ये बैलेंस पैदा हो गया है या इम्बैलेंस पैदा हो गया है कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक कम है, तो मैं लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ बड़ा स्ट्रांगली कि नमाज के अंदर अल्लाह की याद के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसको फर्ज से शुरू करें, बजाय इसके कि नफल पढ़ने के चक्कर में फर्ज भी छोड़ दें। ऐसा ना करें, ऐसा ना होने दें। स्टार्ट स्मॉल, जब दिल करे इसको बढ़ाएं, ठीक है जी? इट हैज टू बी विद द होल ऑफ योर एग्जिस्टेंस कि जब आप अल्लाह को पुकारें। यानी ये नहीं होना चाहिए कि दिल तो कहीं और अटका हुआ है और मैं इधर अपने आप को फर्ज समझ के कर रहा हूँ, ये नहीं करना है जी। आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। कोशिश करें कि अपने अंदर खुदा की, ये जो मैंने अभी सारी बात की है, अपनी जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हुए खुदा को याद रखें। यू डोंट नीड टू बी डूइंग एनीथिंग। अगर आप अपने दफ्तर में बैठे हैं और आपको ये एहसास है कि खुदा मेरे साथ है और मुझे देख रहा है, तो और इस वक्त जिस चीज की मैं तनख्वाह ले रहा हूँ उसका तकाजा ये है और ये मैं खुदा के लिए पूरी करूंगा, तो दिस इज योर इंटरेक्शन विद गॉड। इसको कम ना समझें, ये पूरी इबादत हो रही है अब, ठीक है ना जी? यानी असल चीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम इबादत में खुदा के होते हैं और जिंदगी में लेट्स बी प्रैक्टिकल। मतलब क्या आइडियलिस्टिक बातें ना करो ज्यादा, लेट अस बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना जी? नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी गुजारते हुए खुदा के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं। इट इज माई इंटरेक्शन विद गॉड। इसको जितना आप जेन में रखते जाएंगे पूरी की पूरी जिंदगी इंशाल्लाह इबादत बनेगी जी, इंशाल्लाह। ये एस्पिरेशन है, ये मेरे लिए भी, अपने लिए भी मेरी एस्पिरेशन है कि ये बनेगी इंशाल्लाह। हौसला नहीं हारना है
सर। मेरा स्टिल कंसर्न था इस पे सर। देखिए, फुर्सत जो है ना, आजादी जो है, ये इटसेल्फ एक अलमिया है कि मतलब इंसान आजाद पैदा किया अल्लाह ने, तो उसका इम्तिहान बढ़ गया ना। तो जब मुझे, मैं मसलन वीकेंड अभी आने वाला है, तो मेरे दिमाग में भी इसी ना खुशी की लहर उठती है कि यार रात को फिल्म म्यूजिक मूवी देख लूंगा मैं, मुझे लिटरली एक्साइटमेंट होती है यार कि मैं लाइट्स ऑफ करके अकेला इस तरह से मैं इस पोजीशन में ऐसे ऐसे ही मूवी देखनी है मुझे या ये म्यूजिक सुनना है मुझे। तो सर खुदा जो है वो तो कहीं नहीं होता, मतलब जब मेरे पास आज़ादी होती है, जब मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे पता है हाँ यार जोहर भी पढ़नी है असर भी पढ़नी है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर जाता हूँ, चलो यार 20 मिनट फुर्सत के मिल जाएंगे, बहाना मिल जाएगा सादा अल्फाज में। तो सर ये फुर्सत जो है या आजादी जिसे नेमत कहा गया शायद, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है मेरे लिए,
इसमें कोई शक ही नहीं है।
इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ मैं?
नहीं, इसको इम्प्रूव मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने असल में इस चीज को कि ये मेरी आजादी का टाइम है, असल में आजादी का टाइम उधर भी है, दफ्तर में भी है। आजादी मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, एक है कि आपके ऊपर एक्सटर्नल डिसिप्लिन अप्लाई हुआ है, एक और एस्पेक्ट है आजादी का कि आप उस दफ्तर में ये आजाद है आपके खुदा को याद रखें या ना रखें, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसमें आप पूरी तरह आजाद हैं, ये तो मानते हैं ना
जी? बिल्कुल।
ये जिस वक्त आप करना शुरू कर देंगे तो असल में अब आपकी जो फुर्सत के टाइम में भी इस चीज का गलबा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से जी, यानी आप उसको अपनी जिंदगी में जिस वक्त हम सेग्रीगेटेड जिंदगी गुजार रहे हो कि ये खुदा का टाइम है ये मेरा टाइम है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि मेरे टाइम में अल्लाह ताला आए, बल्कि वो टाइम खुदा के टाइम से भी मैं निकाल के इधर ही डालने की कोशिश करूंगा। जो असल चीज है वो ये कि ये 24 घंटे का जो दिन है, 7 के 7 दिन, 365 दिन साल में, ये खुदा का टाइम है, और इसमें अगर मैं कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो मूवी के लिए निकाल रहा हूं तो उस मूवी में भी खुदा को याद रखूं, खुदा की कुदरत को, उसकी हिकमत को, उसके फैसलों को, उसके पसंद को नापसंद को, सब कुछ को याद रखूं। शुरू इधर से करें, आप समझ रहे हैं, यानी फुर्सत के टाइम को ऑर्गेनाइज करना, जिसके आपने अपने ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर से पूरा हफ्ता अपना गुजारा हुआ है उसमें थोड़ा सा हक इस्तेमाल कर लें एंजॉय करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो पूरा हफ्ता है आप ये ना समझें कि वो खुदा के अलावा गुजर रहा है, असल में आजादी नहीं है आपको कि आपने कितने बजे आना है, लेकिन ये आजादी है कि इस वक्त बैठ के खुदा को याद करना है या नहीं करना, अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए उसके किसी गाली पर मैंने क्या जवाब देना है, खुदा जेन में है जब देना है जवाब। मेरी बात वाजे हो रही है जी, क्या कह रहा हूँ?
सर बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल।
मैं हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन नाउ?
यस सर, इट्स डन।
ओके, थैंक यू जी।
Most welcome. Moisa, I understand that everything is from God. Someone does something very wrong to you, it is from God. But God doesn't interfere in the person's wrong actions, like murder, rape. So, आप ये फरमा रहे थे कि अल्लाह दखल नहीं देता, गलत काम कर रहा है तो उसको करने देता है, एक तो ये बात है। दूसरा जो आप कहते हैं कि हर चीज आप अल्लाह को अपनी लाइफ में लाएं, बट ये बताएं कि समटाइम्स वन एक्सपीरियंसेस वेरी क्रूअल बिहेवियर, तो उस टाइम भी यू थिंक वन शुड टेक इट पैसिवली एंड से ओके अल्लाह वांट्स मी टू डू सबर, और डजंट अल्लाह गिव यू द राइट टू एक्सर्ट योरसेल्फ एंड एक्सप्रेस योर राइट ऑफ रिस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम द अदर्स? थैंक यू।
एक तो ये बात जी, मोस्ट वेलकम जी, एक बात तो ये वाजे कर दूं जी, मैंने ये नहीं कहा है कि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसमें खुदा की इजाजत है तो हो रहा है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, यानी मेरे साथ कोई आदमी ज्यादती करना चाहता है, अल्लाह चाहे तो उसको रोक सकता है, और जब तक उसकी चाहत होगी वो इस आजमाइश के कानून में होगी, अदल के लिए नहीं होगी, इसको जहन में रखें। इस आजमाइश के कानून के अंदर अल्लाह कुछ चीजों को होने देगा, कुछ को नहीं होने देगा, ठीक है जी। इंटरफेयर वो कर सकता है, लेकिन जो कुछ मुझ तक पहुंचता है अच्छा या बुरा, वो असल में खुदा की इजाजत और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं पहुंचता, ये तो क्लियरली बताता है ना कुरान के, यानी तुम्हारे साथ जो अच्छा या बुरा हो रहा है वो खुदा की तरफ से है, किसी और की तरफ से नहीं होता। एक बात ये, आपके पास ये पूरा हक है जी कि आप उससे बात करें, आपके पास ये पूरा हक है। देखिए जो बुरा हो गया उस पर सब्र का मामला करना है, लेकिन बात ना करने का क्या मतलब है? मैंने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ताला ने बात करने से तो नहीं रोका है, जो मैंने कहा है वो ये कि आप जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे आप वो खुदा को समझ के करें कि मैं खुदा को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, यानी मैं खुदा को रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ कि मैं खुदा की पसंद के मुताबिक रिस्पॉन्ड करूंगा। मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे डिसरिस्पेक्टफुली गाली दे दी है, मेरे पास ये पूरी गुंजाइश है, आई एम फ्री कि मैं उसके जवाब में गाली दे के उससे बात कर लूं कि तुम हो गए जो तुमने मुझे कहा है और सब कुछ कर दूं, आई एम फ्री। लेकिन शायद ये अल्लाह को पसंद ना आए, अगर मैं इसके बारे में कॉन्शियस हूं तो मैं उससे बात करूं। बात करने से तो अल्लाह ताला ने नहीं पसंद, ये ना पसंद नहीं किया कि तुम लोगों से बात ना करो, तुम अपनी फीलिंग्स शेयर ना करो, तुम अपने अपने दुख उनसे बयान ना करो, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। यू मोस्ट वेलकम टू इट विद इन द मेथड्स, विद इन द वेज प्रिस्क्राइब बाय गॉड, आपके पास गुंजाइश है। लेकिन जो कुछ हुआ है आपके साथ उस पर वावेला करना, उस पर खुदा से शिकायत करना, उस पर दूसरे के साथ ज्यादती कर लेना, ये खुदा को पसंद नहीं है, तो इसको ना किया जाए। अच्छा, किसी ने कोई ज्यादती की है, आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं, ले लें। मैं ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ज्यादती हो गई और उन्होंने ये कहा कि एक आदमी ने मेरे इतने पैसे मार लिए हैं। तो वकला ने कहा कि कितने मारे हैं, लेट्स से उसने कहा कि 4 करोड़ रुपया मारे, तो उन्होंने कहा हम 8 करोड़ का दावा डालते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 4 करोड़ है। तो कानून की मदद भी जब लेनी है तो इंसाफ के लिए लेनी है, ना कि दूसरे पर ज्यादती कर देने के लिए लेनी है। उसने की है ज्यादती, लेकिन मैं ज्यादती नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है जी। और अगर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं फिर शायद कुछ भी नहीं करूंगा। सवाल ये कि जब ये मेरे क्राइटेरिया बन जाएंगे, जब खुदा मेरी जिंदगी में एक्टिव हो जाता है और मैं जो काम अच्छे या बुरे कर रहा हूं उसमें ये याद रखूं कि खुदा एक्टिव है, तो जाहिर है कि एक सबसे बड़ी बात तो ये कि फिर मैं जानते बूझते हुए बुरा काम करने के चांसेस कम होंगे। इस एस्पेक्ट को सामने रखें, ये मतलब नहीं है कि आपने वही लाजमन करना है जो मैं कर रहा हूं करूंगा, ये भी एक गलती है जी। इट इज पीपल टेंड टू आस्क मी कि फिर आपके ख्याल में इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, नहीं मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ख्याल में अल्लाह को क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू, ये डिवेलप करनी है हमें अपने अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि हम वो फैसले अल्लाह की पसंद के मुताबिक करना शुरू करें। खुदा गलती हो जाएगी लेकिन खुदा हमारे फैसलों में जब शामिल होगा तो इंशाल्लाह वो हमें हमारी जो अनइंटेंशनल गलतियां उन पर माफ भी करेगा इंशाल्लाह।
Well, Sam, I was talking of people murder, people rape, people do all sorts of evil things. Right. And God necessarily doesn't interfere. I was talking in that aspect, not personally.
Subho, इससे तो बात हो चुकी है ना, ये तो बात की है हमने कि खुदा इस मौके पर, यानी लेट से इस टेस्ट के दौरान में अगर अल्लाह ताला मर्डर से रोक दे तो जाहिर है कि एक मर्डर से तो नहीं रोकेगा ना, फिर वो मर्डर से रोक देगा, तो फिर आपके ख्याल में ये टेस्ट जारी रहेगा, ये आपने सोचना है। वो अगर एक खास किस्म की बुराई पर अगर कोई आदमी वो बुराई करने लगे तो उसको दरख्त से लटका दे तो वो बुराई होगी फिर, यानी वो आजमाइश के लिए जो इख्तियार देना पेश नजर है इंसान की आजमाइश के लिए वो दिया जाएगा फिर। यानी ये हैं जो चीजें हमें देखनी है। सारी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में एक टेस्ट का कानून अल्लाह ताला ने नाफिज किया कि मैं इसको आजमाऊंगा तुम्हें अच्छे और बुरे काम के लिए। आपने ये देखना है कि क्या अगर अल्लाह ताला रिस्ट्रिक्ट कर दे, एक तरह एक तो रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका ये है कि मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। ये मेरे साथ किसी ने मेरे साथ ये वाकया शेयर किया था, मेरी जो किताब थी मेरा ख्याल है उसका नाम था तौबा, उसमें शुरू में मैंने लिखा था वो वाकया ये कि वो ये दो लड़के हैं, उन्होंने बैंक लूटा है, ठीक है जी, और बैंक लूट कर ये बागबानपुरा के पास से निकले और दे वर राइडिंग और खुशियां मनाते हुए जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही मर गए। ये भी हो जाता है, ठीक है जी, और वो पैसा वापस मिल गया, उन्हें पैसा वापस भी मिल जाता है, ये रोक दिया है खुदा ने। लेकिन अगर ये तो एक एक्सेप्शनल केस हुआ है, अगर अल्लाह ताला रेप को रोक ही दे, अगर अल्लाह ताला मर्डर को रोक ही दे, फिर मर्डर नहीं होगा, फिर आजमाइश रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाएगी ना, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया जी।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ना ये खैरियत में
जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जस्टिस इज एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, ये समझ आ गई। अगर हमसे कुछ खता सरजर्द हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि हमने खता की और भूल के, या कभी याद आया तो इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आता, शायद सारी जिंदगी नहीं आता। दूसरी सूरत में अगर वो खता होती है तो تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں, اور اگر تو وہ فوراً ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہماری ڈیو ٹو فیتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی, تو یہ ہم ایز اے سزا جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جذبات میں آ کے ہم نے فیصلہ کیا اور جو فیصلہ تھا وہ غلطی تھی, وہ خطا تھی, اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو اس کا نتیجہ ہے, جو اس کا افیکٹ ہے, وہ آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے, آپ کی ذات کا حصہ رہتی ہے, تو سر ہم اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟
ایک بات تو یہ جی کہ اس دنیا میں سزا نہیں ملتی, تنبیہ ہوتی ہے. یعنی یہ جو پوری بات میں نے عرض کیا نا جی, اس کی روشنی میں آپ اس کو دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ میرے غلطی کے کانسیکوینسز مجھے فیس کرواتا ہے, سو دیٹ آئی ایم جولٹیڈ, مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, کیا سے جانے والے ہو, ٹھیک ہے, اور اس جانے میں اگر یہی کچھ کرتے رہ گئے نا تو بہت برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ. تو یہ خدا کی عنایت ہوتی ہے کئی مرتبہ کہ وہ ہماری غلطیوں کے نتائج ہمارے سامنے لے آئے. جو یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی ذات کا حصہ خدا نہ خواستہ اگر بن جائے, تو یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے جی. یعنی اصل مسئلہ جس کو سمجھنا ہے, جس کو کہ ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ کہ اصل میں اس وقت عدل نہیں ہو رہا, اس وقت سزائیں نہیں بٹ رہی, اس وقت جزائیں نہیں بٹ رہی. یعنی اگر آپ کو کچھ ملا ہے, اس وقت اگر سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں, آرام دہ بستر پر سو رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پینے کو مل جاتا ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ بہت کوئی نیک عمل کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر گزار رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں. اس وقت اپنے پیاروں کا ساتھ میسر ہے, اس لیے نہیں کیونکہ میں بڑا نیک ہوں, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے میرے لیے. اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے, کوئی جولٹ ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یہ میرے لیے. اصل چیز دونوں ہی صورتوں میں آزمائش ہے, جس کو کہ یاد رکھنا ہے. اور اگر کوئی غلطی, مثال کے طور پر if I've been careless with my health and I have had to go through heart surgery, تو اس کے نتیجے میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بس یہ کیئرلیسنیس کا نتیجہ تھا, اور اسی کنسٹرکشن میں خدا کو شامل کر لوں اگر, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جولٹ دیا کہ انسان اب جانے کا ٹائم آنے والا ہے, تو ٹھیک ہو جاؤ, تمہیں میں چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤ. And that is why I don't want you to lose the way. ایسا نہ ہونے دو, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو زندگی ہے, بیکاز جتنی بھی اس زندگی میں آپ کی وہ اسٹک کر جائے, اس کے کانسیکوینسز جو آپ کی غلطی ہوئی ہے, جتنی بھی اسٹک کر جائے, بہرحال یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو اسٹک کر جائے, یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری ویری انکریجنگ تھنگ. اگر زندگی میں مشکل ہے تو انکریجمنٹ یہ ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ بہتر دور ہوگا, جس وقت اگر میں اپنے آپ کو اس صبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل قرار دے دوں یا اپنے آپ کو ڈیزرونگ ثابت کر دیتا ہوں, تو انشاءاللہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ دس ول ایکچولی نیور لیٹ یو بی ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونے دے گی یہ چیز آپ کو کبھی بھی, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یعنی خدا کا ساتھ جو ہے وہ کبھی آپ کو ڈسہارٹن نہیں ہونے دے گا, یہ تو کنفرم بات ہے جی. یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے, میں نے یہاں سے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے, فی الواقع بات کر رہا ہوں. یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہاں سے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے, تو ہم یہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں فی الواقع کہہ رہا ہوں, یقین کریں آپ کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سیشن بھی کمپلیٹ کر پانا ہے یا نہیں. میں نے یہ جو ایسپیکٹ ہے, یہ خدا کی یاد کا ایسپیکٹ اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیے, یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیں گے آپ کو.
بہت شکریہ
سر. اس سے
جی
سر, ابھی آپ جواب دے رہے تھے رفیع صاحبہ کے سوال کا, اس کے اوپر کمنٹ آیا ہے مریم صاحبہ کا کہ سر جو مثال آپ دے رہے ہیں اگر وہ درست بھی ہو تو جب تک پیسے واپس ملتے ہیں تب تک تو ان کی قیمت ہی گر چکی ہوتی ہے, تو پھر تو زیادہ کا ہی مقدمہ کرنا چاہیے.
नहीं, असल में ज्यादा का मुकदमा करने का मतलब ये होता है, मुकदमा ज्यादा करने का मतलब ये होता है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे इसने 8 लाख रुपए देने थे, 4 नहीं 8 देने थे, ये झूठ है। आप ये कहते हैं कि जी 4 लाख थे, उसकी वैल्यू 2022 की थी, ये एक और चीज है। आप कह ले मुझे 8 लाख रुपए सोने में चेंज करके 2024 में वापस कर दें, जो 2022 की थी उसमें लेट से 10 तोले सोना आता था, तो मुझे 10 तोले सोना वापस कर दें, दिस इज अ सेपरेट थिंग। यहाँ पर आप कोई झूठा दावा नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि मुझे वो वैल्यू वापस कर दीजिए, वो एक और चीज है। जिस वक्त जो वकला कहते हैं वो असल में कहते किस वजह से हैं वो मैं अभी बयान नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है। यानी जनरली वो कहते हैं उस पर हैकल करना पड़ता है, उस पर निगोशिएशन होती है, सब कुछ होता है और बात इतनी रह जाती है। आप जो दावा दायर कर रहे हैं वो असल में सच्चा दावा होना चाहिए, बस मेरी गुजारिश ये है। बाकी ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो आपने फरमाई है, लेकिन इसमें झूठ बोल के ये बात पूरी नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, सच्चाई के साथ करें। फिर ये बताएं कि ये है, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके मुझे डॉलर टर्म्स में वापस कर दें, या गोल्ड या सिल्वर या कोई भी ऐसी चीज जो कि रियल मनी यूज होती हो। डॉलर तो खैर नहीं है रियल मनी, लेकिन हमारे लिए तो है।
अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो माजरा। मेरा मैंने सिर्फ कल हम अलमौरिद में ओपन माइक सेशन था, उसमें हम बैठे हुए थे तो एक साहिब ने बहुत अच्छा जुमला कहा जो मैं चाह रही थी कि यहाँ बयान कर दूं। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने कुफ्र और शिर्क और सरकशी को, बुराई को कबूल इसलिए कर लिया क्योंकि ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई थी। मतलब उसने अपना हक भी दे दिया इस दुनिया की वजह से, इस आजमाइश की वजह से। मुझे ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग बहुत कहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह के साथ भी वही कुछ हो रहा है। हमें जैसे नेमुल बदल आखिर में मिलेगा वो तो चले ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी अपनी चीज को भी बर्दाश्त कर रहा है कि मुझे जुटलाया जा रहा है। और ये बात बड़ी अच्छी लगी थी,
बहुत शुक्रिया जी, दैट्स अ वेरी नाइस शेयर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम
जी, शुक्रिया जी आप सबका, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।